नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। ताइवान में आए तेज भूकंप में 7 लोगों की मौत और 700 से ज्यादा घायल। क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी। विश्व बैंक ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था स्थिति की समीक्षा के लिए आज कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ एल मुरुगन सहित राज्यसभा के 11 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम विशाखापट्टनम में डेल्ही कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। ताइवान के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में आज आए तेज भूकंप में 7 लोगों की मौत हुई है और 700 से ज्यादा घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई लोग अब भी क्षतिग्रस्त इमारतों में फंसे हैं। रिएक्टर पैमाने पर 7.4 तीव्रता के इस भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। भूकंप का केंद्र ताइवान के हुवालियन शहर से 18 किलोमीटर दक्षिण में समुद्र में लगभग 35 किलोमीटर की गहराई पर था। ताइपे भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक वू चियान फू ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में यह ताइवान और तटीय क्षेत्रों में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार हुवालियन में कई इमारतें ढह गईं और कई क्षतिग्रस्त हो गईं। भूकंप के कारण दक्षिणी जापान और फिलीपींस में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई। जापान के योनागुनी द्वीप पर 30 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी दर्ज की गई। चीन के दक्षिण पूर्वी फुजियान प्रांत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत ताइपे संघ के भूकंप के बारे में सहायता और जानकारी आपात हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आपात हेल्पलाइन नंबर है 9052479 और ईमेल आईडी है ad.ita@mea.gov.in। संघ ने ताइवान में रह रहे भारतीय नागरिकों को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गजा में इजरायली हमले में 7 मानवीय सहायता कर्मियों के मारे जाने की कड़ी निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजरायल पर इन कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराए जाने का आरोप लगाया। कल के हमले में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के नागरिकों के मारे जाने के बाद इजरायल ने स्वतंत्र जांच कराए जाने का वायदा किया है। इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने इस घटना पर दुख प्रकट किया है। विश्व बैंक ने कहा है कि वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत के लिए अपने पहले के अनुमान में संशोधन करते हुए विश्व बैंक ने इसमें 1.2% की बढ़ोतरी की है। हाल के विकास अपडेट के अनुसार वर्ष 2024 में दक्षिण एशिया की समग्र वृद्धि दर 6% रहने की संभावना है। ऐसा मुख्य रूप से भारत में तेज विकास तथा पाकिस्तान और श्रीलंका में आर्थिक बहाली के कारण संभव होगा। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया वर्ष 2025 में 6.1% की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर के साथ अगले 2 वर्ष तक विश्व में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर वाला क्षेत्र बना रहेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की पहली द्विमासिक बैठक मुंबई में शुरू हो गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवार को मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा करेंगे। समिति ने फरवरी में हुई बैठक में नीतिगत रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था और इसे 6.5% रखा था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक करेगा। बैठक में कानून व्यवस्था और गैर कानूनी गतिविधि स्थिति का आकलन और समीक्षा की जाएगी। बैठक में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी से संबंधित सतर्कता उपायों की भी समीक्षा होगी। निर्वाचन आयोग ने कल 6 राज्यों के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान सतर्क निगरानी रखी जा सके और महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हो सकें। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, जहां 7 करोड़ से अधिक की आबादी है, तथा आंध्र प्रदेश और ओडिशा, जहां लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में धनबल का प्रयोग रोकने और चुनावी खर्च पर निगरानी बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तराखंड के रुद्रपुर और राजस्थान में कोटपुतली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उधर राज्य में कांग्रेस और अन्य दल भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बिहार के गया संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान कराया जाएगा। नामांकन वापस लेने के बाद अब केवल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतनराम मांझी और राष्ट्रीय जनता दल के कुमार सर्वजीत के बीच रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार संसदीय क्षेत्र में पहले चरण के चुनाव को लेकर काफी उत्साहपूर्ण माहौल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग ने मतदान निष्पक्ष और सुचारू बनाने के लिए सभी जरूरी तैयारियां की हैं।
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 19 अप्रैल को मतदान होगा। निर्दलीय समेत 11 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। कूच बिहार में 19 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 9 लाख से अधिक है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता विकास का वायदा कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद निशित परमाणिक अपनी सीट बरकरार रखने की पुरजोर कोशिश करेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस के जगदीश चंद्र वर्मा उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस और वामपंथी के बीच गठबंधन के बावजूद दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नीतीश चंद्र रॉय वाम मोर्चा की ओर से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने प्रिया रॉय चौधरी को मैदान में उतारा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कूच बिहार के रासलीला मैदान में चुनाव सभा करेंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी माथाभंग में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
जम्मू कश्मीर में उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान कराया जाएगा। इस दौरान 16,23,000 से अधिक मतदाता 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। वह आज गाजियाबाद में चुनाव रैली को संबोधित कर रहे थे। इस बीच गौतम बुद्ध नगर से भाजपा प्रत्याशी महेश शर्मा ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं ने आज नामांकन भरा है।
भाजपा की ओर से पाली से पार्टी प्रत्याशी पीपी चौधरी ने, जबकि जालौर सिरोही सीट से प्रत्याशी लुम्बा राम चौधरी ने आज अपना नामांकन भरा है। वहीं कोटा से भाजपा प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता ओम बिड़ला ने नामांकन भरने से पहले एक विशाल जनसभा की। इस जनसभा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से आज भीलवाड़ा से प्रत्याशी सीपी जोशी, बाड़मेर प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल तथा झालावाड़ 12 प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस की ओर से भी सभी प्रत्याशियों के समर्थन में नामांकन रैलियां आयोजित की जा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज केरल के वायनाड संसदीय सीट से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कालपेट्टा में एक चुनावी रैली भी की। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और कई प्रमुख नेता इस रैली में मौजूद थे। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एनी राजा ने नामांकन भरा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुंदरन भी कल नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल गांधी और एनी राजा के नामांकन भरने के बाद राज्य में दिलचस्प स्थिति बन गई है। दोनों ही नेता आईएनडीआई गठबंधन के सदस्य हैं। यह गठबंधन विपक्षी दलों द्वारा बनाया गया है। केरल में इस महीने की 26 तारीख को मतदान होगा। कल नामांकन का आखिरी दिन है। पर्चों की जांच 5 अप्रैल को होगी और 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव प्रचार के सिलसिले में आज उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में घर घर गारंटी अभियान शुरू किया। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सरकारी कार्यालयों में रिक्त पद तत्काल भरे जाएंगे और पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। निष्पक्ष चुनाव सफल लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। चुनाव में सभी मतदाताओं से मतदान की अपील की जाती है क्योंकि इससे लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है तथा सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट।
भारत के चुनावी इतिहास में ऐसे उदाहरण भी हैं जहां राजनेताओं का भाग्य सिर्फ एक वोट के कारण अधर में लटक गया। ऐसा ही एक उदाहरण है 2004 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में संते मरहल्ली विधानसभा क्षेत्र से जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार एआर कृष्णमूर्ति को कांग्रेस के आर ध्रुव नारायण से महज एक वोट के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। इसी तरह 2008 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उस समय के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार सीपी जोशी को नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कल्याण सिंह चौहान ने सिर्फ एक वोट के अंतर से पटकनी दे दी। ऐसे उदाहरण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आकार देने में प्रत्येक वोट की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए नई दिल्ली से दुर्गेश भदौरिया।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय मंत्री डॉ एल मुरुगन सहित राज्यसभा के 11 नए सदस्यों ने आज शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को संसद भवन में अपने कक्ष में शपथ दिलाई। नए सदस्य हैं बिहार के प्रोफेसर मनोज झा, धर्मशीला गुप्ता और संजय यादव, हिमाचल प्रदेश के हर्ष महाजन, हरियाणा के सुभाष चंदर, महाराष्ट्र की मेधा कुलकर्णी और चंद्रकांत हंडोरे, कर्नाटक के जीसी चंद्रशेखर, गुजरात के गोविंद भाई ढोलकिया, उत्तर प्रदेश की साधना सिंह और मध्य प्रदेश के अशोक सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह सहित 56 सदस्यों का इस सप्ताह राज्यसभा से कार्यकाल समाप्त हो गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच विशाखापत्तनम के वाईएस राजशेखर क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 28 रन से हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को मानहानि का नोटिस भेजा है। आतिशी ने दावा किया था कि उनसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया था। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आतिशी झूठ बोल रही हैं और उनका आरोप आधारहीन है। श्री सचदेवा ने कहा कि आतिशी को क्षमा मांगने के लिए समय दिया गया था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ताइवान में आए तेज भूकंप में 7 लोगों की मौत और 700 से ज्यादा लोग घायल। क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी। विश्व बैंक ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था स्थिति की समीक्षा के लिए आज कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ एल मुरुगन सहित राज्यसभा के 11 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम विशाखापट्टनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।